सकते हैं, अदरवाइज हम उनके लिए कोई और सोल्यूशन देखते हैं उनकी सिचुएशन के हिसाब से।
शिराज शफी का नंबर 416-502-8000-402-8000 शिराज शफीक का नंबर है। अभी शिराज शफीक ने जब बात की ना, शिराज आप उनको प्लीज प्राइस में भी जरूर थोड़ा लुक आफ्टर कीजिएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजों को, इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, यू मस्ट टॉक टू हिम। मैं अपने रिस्क की जगह पर बैठी हुई हूँ, आप यकीन कीजिएगा, एक कमर्शियल को मैंने दो वजूहात के ऊपर रोका था। कहते हैं कि आप किसी के साथ डील करके देखें, और अगर आपको लगे कि रिलायबल नहीं है, तो अगर वो मेरे साथ या मैं आपके साथ, एक के साथ रिलायबल नहीं, तो मैं बाकी 10 और के साथ भी रिलायबल नहीं होंगी। तो एक तो हमने यहां पे परखा। दूसरा, मैं मुझे याद है मैं ड्राइव कर रही थी, एंड आई वॉज ड्राइविंग ऑन कौन सी सड़क थी, यहां से जो जाते हुए ना टॉमकन रोड पे मैं नॉर्थ की तरफ जा रही थी, तो मुझे याद है एडवांस बुलीवार्ड और टॉमकन का इंटरसेक्शन था। तो मुझे एक भाई साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा जी मैंने मॉर्गेज ली, और मॉर्गेज ली भी बहुत कम, और उस पे उन्होंने तकरीबन 15% पे, जरूरतमंद आदमी था, ऑनेस्ट टू गॉड वेरी नेक्स्ट डे आई स्टॉप दैट कमर्शियल। यू नो व्हाट, आप मेरे साथ कुछ और, अल्लाह ताला आपको रिस्क दे, आप मेरी तरफ से 50% चार्ज करें, मगर अगर कोई शख्स मुझे कॉल करके ये बात कहे, तो मैंने उन भाई से भी यही कहा, मैंने कहा भाईजान आपने इतने पैसे दिए क्यों? कहते आरकवाजी में फंसा हुआ था, मैं मजबूरी में था। तो ऐसे फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया, मैं क्या कर सकती हूँ। तो बहरहाल आप शिराज शफीक से बात कीजिएगा, आई गारंटी यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस। 416-504-502-8000 शिराज आपका बहुत शुक्रिया।
थैंक यू जी, ओके जी, अल्लाह
हाफिज। शिराज शफीक, बीन एडवर्टाइजिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मॉर्गेज की जरूरत है, यू मस्ट कॉन्टेक्ट हिम। टॉप ऑफ द आवर का वक्त हुआ चाहता है, लेट्स गो फॉर टॉप ऑफ द आवर, विल कम बैक, प्लीज स्टे ट्यून्ड। स्टूडियो का नंबर आप नोट कर लीजिएगा, और अब इसके बाद हमारे मुअज्जज मेहमान शामिल होंगे, जनाब करामतुल्ला गौरी साहब शामिल होंगे, मेरे साथ रहिएगा।
हाल ही ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਮੋਰਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੂਨ 14 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਸਰਗਮ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੈਲਮੋਰਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/rec month ਤੇ ਜਾਓ।
ਭਾਈ ਸਸਤਾ ਲਾ ਲਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ 6 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਲੈ ਲਾ। ਓਹੋ ਸੱਲਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ, ਫਰੂਟਸ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ।
ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ, ਪਲੇਟਾਂ, ਬਾਟੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਕੈਲਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਖਰੇ ਪੌਦੇ, ਮਿੱਟੀ, ਗਮਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲਡਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 12050 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਕੈਲਡਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ 905-840-9000-905-840-9000।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
वही बात सादा की है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह, 6472903773 6472903773।
12th annual Handi Mississauga Halal Food Festival, Friday, June 13th, Saturday, June 14th. Fun, food and entertainment is back at Celebration Square, Mississauga.
Bina kisi hawai safar ke travel around the world. Mauj masti khao, piyo. Turkish, Irani, Iraqi, Misri, Pakistani, Indian. Halal food, bas zaike hi zaike. Live concert, Nisha Shafi. Aur Shehzad Roy.
Hawa machaye shor doye.
फ्री एडमिशन, फ्री पार्किंग, फ्री 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 और क्या,
और क्या आप हमारी जान चाहिए, इससे ज्यादा फन आपको कहीं मिल सकता ही। मार्क 13th एंड 14th ऑफ जून एट सेलिब्रेशन स्क्वायर, नो टिकट्स, फुल एंजॉयमेंट। कम विद योर फैमिली, कॉल अमेरिकन C416662786 1।
Tired of missing your favorite Indian shows? Introducing Fastway IPTV, your gateway to 11,000 plus channels and 150,000 plus movies and series, all in one box. Catch up TV, full HD streaming, VOD and regional channels. One-time payments, long-term peace of mind. Just $216 for 2-year subscription and free 4K IPTV box. Just $360 for 5-year subscription and free 4K IPTV box. Call now 866-692-4788 and bring home the ultimate South Asian entertainment experience. Free delivery all over Canada and US. Fastway IPTV, entertainment your way.
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो। 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दा दा भी चलाउने हो, मैनुअल जा ऑटोमेटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब, लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक, ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक, 416671-0577।
डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान, अब मिसिसागा में दूसरी लोकेशन के साथ, रूट केनाल, व्हाइट टीथनिंग, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री, डेंटल क्राउन्स, विजडम टूथ रिमूवल, क्वालिटी डेंटल केयर पूरी फैमिली के लिए, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, वॉक इन एंड इमरजेंसी, एक्सेप्टिंग कनाडा डेंटल केयर प्लान। डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान, 3465 प्लेटेनियम ड्राइव, यूनिट 76, मिसिसागा, फोन 905-820-0900, 905-820-0900। अब मॉर्गेज की परेशानी हुई खत्म, कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। कमर्शियल मॉर्गेज, रेजिडेंशियल मॉर्गेज, प्राइवेट मॉर्गेज, कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज, रीफाइनेंस, रिन्यूअल, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेकंड मॉर्गेज, ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस। कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार से आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए। इनके पास है मॉर्गेज इंडस्ट्री में सालों का तजर्बा और आपकी मॉर्गेज का आसान हल। जैस्मीन परमार, प्रिंसिपल ब्रोकर, कॉल टुडे 6479235659, 6479235659। स्पीक योर लैंग्वेज इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी, लाइसेंस नंबर 13654।
अयो, इतना खूबसूरत घर,
आपने भी बेसमेंट के रेनोवेशन करवाना है तो रब्ता करो, एक चीता मेरे हाथ में लगा। क्या कमाल की रेनोवेशन और दाम बहुत मुनासिब।
कौन सी रेनोवेशन, टैरिफ लग रहे हैं, भूल जाए सब कुछ।
अरे बाबा चिंता ना करो, नैशिक रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन, लीगल बेसमेंट, साइड एंट्रेंस, वॉशरूम, किचन, पेंट, फ्लोरिंग, तमाम काम सिटी परमिट के साथ करवा के देते हैं, बहुत मुनासिब दाम है। अब ये आजमाइश शर्त है, गारंटीड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 416-838-7837, 416-838-7837।
جی صاحب، پروگرام میں ایک خبر سے خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. ہمارے فرما ظفر آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت ٹیوزڈے کا دن ہے، آج 10 جون، اور دیکھیے صاحب وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے. بڑی عید کا انتظار تھا، بڑی عید بھی گزر گئی اور بڑی عید گزرنے کے بعد بھی 4 دن اوپر سے گزر گئے. بہرحال اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس سمت میں چلتے جاتے. میں آپ کی ملاقات ایوری ٹیوزڈے کو ہماری ملاقات ہوا کر چکی ہے جناب قابل احترام، جناب ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں کرامت اللہ غوری صاحب، جنہوں نے ڈپلومیٹک پوزیشنز کے اوپر بھی رہے اور مختلف لیڈرز کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا. یقیناً ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر آپ امیجن کیجئے گا، میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں. دیر آر سم فیو تھنگس جو مجھے پسند ہے، دیر آر فیو تھنگس جو میرے جگر گوشے کو پسند نہیں. There are few things, حالانکہ وہ میرے جسم کا حصہ ہے اور میرے دل اور میری جان ہے، اس کو پسند ہے، مجھے پسند نہیں. بٹ یہ تو نہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ دینا ہے. وی ہیو ٹو لیو ٹوگیدر، وی ہیو ٹو فائنڈ درمیان کا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے. بٹ انفارچونیٹلی دس پولرائزیشن از ٹو مچ ایٹ دا مومنٹ. دنیا میں مائی وے اور ہائی وے ہم سمجھتے ہیں، اور آپ اگر سمجھیے گا کہ اگر میں یہ فیل کروں کہ مائی وے اور ہائی وے تو یو ہیو دا ایکول رائٹ، تو پھر کیا ہوگا؟ بدترین تصادم ہوگا. اسی میں تصادم میں وہ کہتے ہیں نا، میری ایک اور کسی شخص سے 2-3 دن پہلے بات ہو رہی تھی، تو مجھے کہنے لگا کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ میں اپنی زندگی میں ایک غلطی کرنا نہیں چاہتا، حالانکہ میرے ساتھ کے باقی لوگ وہی کچھ کر رہے ہیں، مگر میں نہیں کرنا چاہتا، بیکاز میں نہیں چاہتا کچھ عرصہ ڈاؤن دا روڈ جب میں اس ایج میں سے نکل جاؤں تو میں پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ساری عمر معاف نہ کر سکوں، میں ریگریٹ کروں. دیر مائٹ بی پاسبل کہ مذہب دماغ کے اوپر آ جائے تب میں ریگریٹ کروں. تو ویسے بھی زبان وہ چیز ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، تیر کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، اسی لیے اسی طرح زبان سے نکلے ہوئے لفظ واپس نہیں آتے. آئی ویلکم کرتے ہیں، مل کے ویلکم کرتے ہیں جناب کرامت اللہ غوری صاحب کا، اور غوری صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے. سر السلام علیکم.
وعلیکم السلام. عرفہ، 2 ہفتے کے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے.
سر 1 ہفتے میں تو میں نے لوگوں نے قربانی کی بکرے کی، میں نے اپنی قربانی کرنے کی کوشش کی تھی. میں نے بھی، اب میں کس کا نام لوں، اگر میں لوں گی تو ہاتھ میں ایک چیز پکڑی، چھریاں تیز کی ہوئی تھی، ہاتھ میں چیز پکڑ کے اس میں زور سے چھری مار رہی تھی اس کو تیز سوراخ کرنے کے لیے، چھری اس میں سے نکلی اور میرے ہاتھ کے اندر چلی گئی، اور پھر اس کے بعد میرا ہاتھ آگے پیچھے سے سوجا رہا. پھر میرا ابھی بھی میری مٹھی بند نہیں ہوتی، تو وہ ایکسیڈنٹل. تو میں نے اپنی قربانی کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ میاں کے رستے میں اپنا خون بہایا تھا.
وہ تو قربانی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. کرم تو لوگ، اور صاحب سب سے پہلے بتائیے گا، عید کیسی گزری آپ کی؟
معمول کے مطابق.
معمول کے
مطابق، ہاں. یہاں پر وہ بات تو ہوتی نہیں جو پاکستان میں ہوا کرتی تھی کہ قربانی کا جانور خود ذبح کرتے تھے، اس کے گلے پہ چھری پھیرتے تھے، اور پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ اماں ہماری وہ بقرعید کے لنچ کے لیے جانور کی وہ جو کلیجی ہوتی تھی، وہ
پہلی چیز گھر میں کلیجی،
پہلی چیز کلیجی بھنتی تھی، اور وہ اماں ہم سب کو کھلاتی تھی. تو وہ دن تو گئے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ میرا تو معمول یہ ہے کہ پچھلے 20 برس سے میں اکنا کو یا کسی اور خیراتی ادارے کو رقم بھیج دیتا ہوں، اور یہ بتا دیتا ہوں کہ کس ملک میں مجھے قربانی کے گوشت کو تقسیم کروانا. تو اس سال میں سمجھتا ہوں کہ یمن کے لوگ نہ صرف غریب ہیں، نہ صرف نادار ہیں، بلکہ پوری اسلامی دنیا میں اگر کوئی مسلمان بیدار ہیں تو وہ یمنی ہیں.
صحیح.
اس لیے کہ انہوں نے اپنی کمزوری کے باوجود، اپنی ناطاقتی کے باوجود جو حریت کا مظاہرہ کیا ہے، جس طرح سے غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں وہ کمر بستہ ہوئے ہیں، وہ آئینہ دکھانے والی بات ہے پوری مسلمان امہ کو. لیکن ہماری ہی مسلمان امہ میں مجھے دو ہی امتوں سے شکوا ہے، ایک تو اپنی مسلمان امت سے اور دوسرے اپنی پاکستانی قوم سے. یہ غفلت کی وہ نیند سو رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر سور بھی پھونکا جائے گا تب بھی یہ شاید بیدار نہیں ہوں گے.
صحیح. پولرائزیشن کی بھی ہم نے بات کر لی، میں ظاہر دنیا کی بھی آپ نے ذکر کی. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت دنیا جس صورتحال سے گزر رہی ہے، ہم پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ ماں باپ بچوں کے درمیان بھی، بھائی بھائی کے درمیان بھی اختلاف ہے. بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. تھوڑا سا انٹرنیشنل صورتحال کو اگر آپ کے ساتھ دیکھ لوں، ابھی آپ نے مسلم امہ کے بارے میں کہا اور میں تاریخ کی روش میں آپ سے بات ایک کرنا چاہتی ہوں. ابراہم اکارڈ سعودی عربیہ کائنڈ آف اس کے ساتھ ہے، مگر کوئی واضح پکچر ہمیں مل نہیں رہی. ابراہم اکارڈ بھی قربانی پہ بلیو کرتا ہے، جیو بھی قربانی پہ بلیو کرتے ہیں، ہم بھی، مگر وہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں کے درمیان تصادم آتا ہے. ہم کہتے ہیں حضرت ہاجرہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں حضرت سارہ کے بیٹے سے. میں مکہ معظمہ اور مدینہ پاک کی طرف چلتی ہوں. مدینہ مکہ معظمہ کی بنیادوں کو کھڑا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے. مقام ابراہیم بھی وہاں پہ موجود ہے واضح طور پہ. حضرت ابراہیم پہ جتنا میرا اعتبار ہے ایگزیکٹلی اس سے اتنا اعتبار جیوش کمیونٹی کا بھی ہے. شاید ہم سے زیادہ وہ اس کو اون کرنے کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ ان کی حضرت اسماعیل کی اولاد سے صرف ایک پیغمبر آئے، باقی تمام کے تمام پیغمبر جو تھے وہ حضرت سارہ کے بیٹے میں سے آ گئے تھے. آگے آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک ہجرت کر کے جاتے ہیں تو مدینہ پاک میں اس وقت دا اسٹرانگیسٹ کمیونٹی اینڈ اسٹرانگیسٹ فیملی واز، جو تاجر تھے وہ یہودی تھے. ٹھیک، وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی رہے، مگر پھر بعد میں انہوں نے مخبری بھی کی، اس پہ بہت ساری قرآن کی آیات بھی ہیں کہ ان پہ اعتبار مت کرو وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ وہاں سے نکل کے چلے بھی جاتے ہیں.
سورہ الحشر جی، جو قرآن کا 59واں سورہ ہے، وہ تمام تر اسی انہی قبیلوں کے متعلق ہے جنہوں نے رسول اللہ سے معاہدہ کیا تھا لیکن پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. تو سورہ الحشر وہاں تین یہودی قبیلے آباد تھے، تو بنو قینقا، بنو نزیر اور تیسرا قبیلہ کیا تھا وہ،
مگر آپ
جنہوں نے رسول اللہ سے معاہدہ کیا تھا لیکن دغا کی، اور پھر جو قریش مکہ تھے جو مسلمانوں کے دشمن تھے، جو رسول کے دشمن تھے، ان کے ساتھ ملی بھگت کی، جس کے نتیجے میں خدا کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. تو وہ یہ جو عرفہ آج کل جو ہم بنو قطے ہاں، تو یہ جو ہم آج کل پولرائزیشن کے جس کا تم ذکر کر رہی تھی، یہ اس کی تاریخی سند ہے، اس کی تاریخ میں جڑے ہیں. دیکھو کل رات کو میں پروگرام سن رہا تھا اتفاق سے، ای آواز پہ ہماری شازیہ ملک کا، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مغرب میں یہ جو عام تصور پایا جاتا ہے کہ سیمائٹ صرف یہودی ہیں تو یہ بالکل غلط ہے. اور یہ ظاہر ہے ہم حضرت ابراہیم کو امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ امام الانبیاء یوں کہتے ہیں اس لیے کہ انبیاء کی نسلیں انہی سے چلی، اور وہ اس لحاظ سے آج جو مغرب میں خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے جو یہ कोशिश की जा रही है एब्राहमिक रिकॉर्ड्स के के उन्वान से जो जो पॉलिसी बेची जा रही है, जो बेचने की कोशिश की जा रही है, उसका लुबेलुबाब यही है कि तीनों जो इल्हामी मजाहिब हैं वो हजरत इब्राहिम से उनका सिलसिला चला है, यहूदियत, ईसाइयत और हमारा दीन इस्लाम, तीनों की जड़ें इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह में हैं। उनके दूसरे बेटे थे हजरत इसहाक जिनसे यहूदियों की नस्ल चली। तो ये पोलराइजेशन तो
मैं जो अभी आपसे
सदियों से
मेरा जो आपसे सवाल
लेकिन
था,
आजकल हो ये रहा है जो हमें नजर आ रहा है, जो मुझे बतौर तारीख के एक तालिब इल्म की हैसियत से नजर आ रहा है और मैं बैनुल अक्वामी ताल्लुकात का तालिब इल्म रहा हूं, मैंने मास्टर्स उसी मौजू में किया है, तो मुझे ये लगता है कि दुनिया बैनुल अक्वामी कवानीन से गुरेज कर रही है और जो सबसे बड़ी आलमी ताकतें हैं वो जानबूझ के अमलन कानून की हुक्मरानी से गुरेज कर रही हैं। मिसाल के तौर पर कल जो इसराइल ने किया वो जो फ्लोटीला जो इंसानी हकूक के पासदारों का जो फ्लोटीला जो जो कश्ती गज़ा की जानिब जा रही थी
बरतानिया का झंडा
अक्वामी पानियों में इंटरनेशनल वाटर्स में इसराइल ने उस पर कब्जा किया, उस कश्ती को ले गए अजदूद की बंदरगाह पर, अपनी बंदरगाह पर, वहां उन तमाम हुर्रियत पसंदों को जो उस फ्लोटीला में शामिल थे उनको कैद कर लिया गया, एक एक करके उनको रिहा किया जा रहा है लेकिन अब तक सबको रिहा नहीं किया गया।
चार लोगों पांच लोगों को रिहा नहीं किया गया, उनसे रिटर्न ले लिया गया,
उनको
जेल
रिपोर्ट कर दिया गया है। वो जो उसमें एक जो सबसे मारूफ ग्रेटा की जो स्वीडन की बाशिंदा है उसको पेरिस भेज दिया गया है, एक को स्पेन भेज दिया गया है। तो ये इसराइल ने क्यों किया, सवाल ये है कि इसराइल ने ये क्यों किया कि जानते बूझते हुए बैनुल अक्वामी पानियों में उस कश्ती को रोका गया, इसलिए कि इसराइल ये समझता है कि वो हर कानून से बालातर है। और आज जो पांच मगरबी ममालिक ने इसराइल के दो वजरा पर पाबंदी लगाई है, इतमार बेन गवीर और स्मोटरिच पर, ये वो लोग हैं, ये वो वजरा हैं जो बबांगे दोहल ये कहते रहे हैं कि गजा से बल्कि पूरे मकबूजा फलस्तीन से फलस्तीनियों का इनखला जरूरी है, इसलिए कि ये समझते हैं कि बकौल इनके अल्लाह ने इनको ये जमीन ता अबद इनके इनकी विरासत में लिख दी है, इनको मजहबी हक है अल्लाह की तरफ से कि ये इस जमीन पर रहे, इसलिए कि वो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहे हैं। वो जो नारा लगाया जाता है कि फरात से लेके और नील के साहिल तक फ्रॉम यूफ्रेटिस टू नाइल, तो वो इस पर अमल पैरा है। और इसराइल को क्यों मुआवजे से या एहतसाब से डर नहीं है, इसलिए कि इसराइल को यकीन कामिल है कि कुछ भी हो जाए। और अब हमने अभी देखा कि पिछले हफ्ते अमेरिका ने सलामती काउंसिल में अक्वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 14 अराकीन जिनमें 4 मुस्तकिल अराकीन भी शामिल थे वो इस करारदाद के हक में थे कि गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन अमरीका चूंकि नहीं चाहता, अमरीका चूंकि पूरी तरह से सरपरस्ती कर रहा है इसराइल की, लिहाजा अमरीका ने वहां अपना वीटो इस्तेमाल किया। तो इससे जाहिर होता है कि इसराइल का ये समझना کہ امریکہ ہر حال میں اس کے سر پر اپنے دستے شفقت رکھے گا، غلط نہیں ہے؟
بہت شکریہ. میں آپ کو دوبارہ وہیں لے کے جانا چاہتی ہوں بھی، جیسے ہو گیا کہ بنو قرادے ہیں، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع، یہ تین
بنو
قینقاع، یہ تین
بنو
قریظہ
اور بنو قرادے اور بنو قینقاع،
جی یہ تین تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ پاک میں، اور اس کی پوری ان کا وہاں سے نکالا جانا، ان کا واپس آنا، ان کی جو شرارتیں تھیں وہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے. میرا جو آپ سے سوال یہ تھا کہ مسلم ممالک خاموش ہیں سوائے یمن کے، شمال بھی، شام بھی، اب آئی ڈونٹ نو کس طرف کو چل پڑا،
شام بھی پوری طرح سے مغربی بلاک میں شامل ہو،
مگر اب میرا جو کنسرن ہے سعودی عربیہ کی خاموشی پہ، کہ اگر یہ پرومسڈ لینڈ کی بات کرتے ہوئے اپنی کتاب تورات کے مطابق چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ دس از اے پرومسڈ لینڈ فار اس، فار دا جیوش پیپل، تو واٹ ڈو یو تھنک کہ آج اس پرومسڈ لینڈ کو اچیو کرنے کے بعد، اس میپ کو اچیو کرنے کے بعد، دے وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو کانکر مکہ معظمہ، بیکاز اس کی بنیادوں کو ان کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم وہاں پہ بھی تھے، اینڈ آج بھی وہ باقیات موجود ہیں ان قبائل کی، یہ تینوں قبائل جو کہ تینوں قبیلے جو یہود کے تھے مدینہ پاک میں، تو ڈو یو تھنک کہ دے کین گو ٹو، دے وڈ لائک ٹو ہیو مدینہ؟
ان کا خواب تو یہی ہے.
تو ڈو یو تھنک سعودی عربیہ نوز اباؤٹ اٹ؟
سعودیوں کو معلوم ہونا چاہیے، یہ تو ہر پڑھے لکھے انسان کو معلوم ہے، ہر پڑھے لکھے مسلمان کو معلوم ہے کہ یہودیوں کا گریٹر اسرائیل بنانے کا کیا منصوبہ ہے، اور وہ اس کو کس حد تک، کہاں تک، کس سرزمین تک توسیع دینا چاہتے ہیں. اگر سعودی کسی خام خیالی کا شکار ہے تو انتہائی افسوس کی بات ہے. یہ تو کسی مسلمان، سمجھدار مسلمان کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسرائیل اس پالیسی پر عمل پیرا ہے جس کے اختتام پر وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور مغربی ممالک کی تمام تر سرپرستی اس کو حاصل ہے. دیکھو آج برطانیہ نے بھی پابندی لگائی ہے، لیکن برطانیہ نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ان دو اسرائیلی وزراء پر پابندیاں لگانے کا یا ان کو ان کے اثاثوں کو ضبط کرنے کا مغرب میں یا ان کے مغربی ممالک میں داخلے پر پابندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برطانیہ اسرائیل کی بقول اس کے جو سرکاری اعلامیہ ہے، اٹ از ناٹ اے گوئنگ اگینسٹ اٹس ان ویورنگ سپورٹ فار اسرائیلز رائٹ ٹو ایگزسٹ. تو یہ تو ظاہر ہے کہ جو بنانے والے تھے اگر وہ اپنے اس موقف کا اعادہ نہیں کریں گے، اس کو دہرائیں گے نہیں، تو پھر تو یہی ہوگا عارفہ بی بی کہ کوئی والدین اپنے بچے سے ناراض ہو کر اس کو جائیداد سے بے باک کر دے. سنا وہ اسرائیل کی سرپرستی ترک نہیں کرنا چاہتے. یہ تو کاغذی کاروائیاں ہیں، یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ صرف.
بہت شکریہ. 1146 آپ نے کہا دے نیور ایور کین گو ٹو مدینہ شریف اکارڈنگ ٹو احادیث. ظاہر ہے ایک بڑی جنگ کا ہوگا، وہ تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، بٹ دے کال اٹ اے پرومسڈ لینڈ.
وہ جو جنگ ہے، دیکھو مختلف احادیث ہیں، احادیث بھری ہوئی ہیں. کسی حدیث میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مدینے پہ، نہ صرف مدینے پہ قبضہ کر لیں گے بلکہ مکے پر بھی قبضہ کر لیں گے. تو یہ احادیث مختلف قسم کی ہیں، میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا،
اس چیز کو ہم ٹچ ہی نہیں کرتے، مگر
پڑھنا چاہتا
جو ہم ذکر اگر کرتے ہیں.
لیکن ہم ہمارا جو استدلال ہے وہ یہ کہ دنیا قانون کی حکمرانی سے گریز کر رہی ہے. دنیا لاقانونیت کی طرف جا رہی ہے اور اس کا مظاہرہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت میں ان دنوں جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. لاس اینجلس میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح سے صدر ٹرمپ نے قانون کی شکنی کرتے ہوئے وہاں پر
2000 گارڈز
بھیج دیے, 4000 نیشنل گارڈز بھیجے ہیں اور اس کے علاوہ 700 مرینز بھی وہاں بھیجے گئے ہیں, جبکہ امریکہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ نیشنل گارڈز یا مرین صرف اس وقت بھیجے جا سکتے ہیں جب اس ریاست کا گورنر وفاقی حکومت سے یہ کہے کہ میری مدد کو آؤ, اس لیے کہ میری پولیس اس لاقانونیت پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے, ناکافی ہے. لیکن کیلیفورنیا کے گورنر نے کوئی اس قسم کی استدعا نہیں کی, کوئی فریاد نہیں کی, کوئی التجا نہیں کی, لیکن ان کے التجا کے نہ کرنے کے باوجود صدر ٹرمپ نے اپنے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے, اس لیے کہ وہ جس روش پر گامزن ہیں, میں یہ کہتا ہوں بلا خوف تردید کہتا ہوں عارفہ بی بی کہ امریکہ نے غلاموں کو آزادی دینے کے بعد سے, لنکن کے دور میں یہ ہوا تھا 1865 میں, اس کے بعد سے دنیا میں جو بھی نام کمایا تھا اور 150 برس کا جو سرمایہ امریکہ نے اپنے حق میں بنایا تھا, ٹرمپ کی کوشش یہ ہے, تمام تر کوشش جس کا وہ کہتے ہیں نا کہ دیگ کا ایک چاول دیکھ کے بتا سکتے ہو کہ دیگ تیار ہو گئی ہے یا نہ یا تیار نہیں ہے, تو صدر ٹرمپ کی جو روش ہے, جو پالیسی ہے جس پر وہ گامزن ہے, جس ایجنڈا پر وہ عمل کر رہے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے جو کچھ آج تک بین الاقوامی برادری میں نام کمایا تھا, ٹرمپ اس کو ملیا میٹ کرنے کے درپے ہے, اس کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور امریکہ میں جمہوریت کی جگہ آمریت کو مسلط کرنا چاہتا ہے.
بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا, مگر میں وہی باتیں نا کہ یہ دنیا بالکل الٹی ہو گئی ہے, جو صحیح کر رہا ہے وہ کمزور ہے اور جو غلط کر رہا ہے وہ مطلب وہ بلنگ کرنے والا, اس وقت بلی کرنے والا ہی ہوا نا, تو وہ صحیح. اچھا میں سر پاکستان کی طرف تھوڑا سا آپ کو لے کے آنا چاہتی ہوں, ذرا کینیڈا امریکہ کی بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کی, اس ملک میں بھی پرابلمس ہیں اور آپ نیوز کو بڑی تفصیل سے دیکھتے ہیں. آج ہی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ایک آئی ہے کہ کینیڈا نے, ظاہر ہے ہمارے جو مارک کارنی ہیں پرائم منسٹر, انہوں نے بھی جو نیٹو کے لیے بجٹ زیادہ کرنے کے لیے ہمارا ڈیفنس کا بجٹ بھی بڑھا دیا, مگر ایک جیٹس کی ڈیل جو کی تھی امریکہ کے ساتھ کی تھی, اور آج ہماری آڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ وہ جو فگرز لوگوں کے سامنے آئے تھے, دا ایکچوئل فگرز آر مچ ہائر دین دیٹ نمبر, یعنی اس سسٹم میں بھی غلط بیانی ہے.
ہاں جال سازی ہے بالکل یقیناً, یہ قوم کے ساتھ فریب ہے, دھوکہ دہی ہے, کہ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکا, یہ بازی گھر کھلا, تو ہمارے ہاں بھی بازی گھر, سیاست داں میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ بازی گھر ہوتے ہیں, تو ہمارے وطن ثانی کے سیاستداں اور قائدین بھی عوام کے ساتھ فریب کر رہے ہیں.
یہ سب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے کہ امریکہ سے خریدے گئے F-35 لیئر جو تیارے ہیں جیٹس, وہ تخمینے سے 50% زیادہ مہنگے پڑیں گے, آڈیٹر جنرل کی آج کی رپورٹ ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ان کو خریدنے کے بعد پھر اور چیزیں جو خریدیں گی, تو جو نمبرز نظر آ رہے ہیں یہ ایکچوئل نمبر اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. کرم سر غوری صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے, پاکستان کا ڈیلیگیشن ششی تھرو جو تھے وہ بھی ظاہر ہے انٹرنیشنل ٹور پہ نکلے, انڈیا کا بیانیہ جو 88 آورز کا ایپیسوڈ تھا उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी उनको नदामत का सामना करना पड़ा कि जहां पे वो अपना इंडिया को पोर्ट्रे करना चाहते थे तो वो ऑलरेडी पाकिस्तान के हक में वो लोग कर रहे थे। पाकिस्तान का डेलीगेशन भी गया जिसको बड़े वाइजली बिलावल भुट्टो ने रिप्रेजेंट किया है। वहां का एक थिंक टैंक है IISS जिसमें भुट्टो साहब भी गए थे, पाकिस्तान के और भी बहुत से लोग गए।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज,
एग्जैक्टली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ IISS। भुट्टो साहब भी यहां पे गए थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब भी गई थी और इस दफा बिलावल भुट्टो साहब भी तशरीफ लेके गए। दरमियान में भी बहुत से और लोगों ने भी वहां पे अपनी प्रेजेंस दी है। वहां की आज जो मेरे नजर से गुजरा तो उन्होंने कहा कि दिस यंग मैन बिलावल भुट्टो अपनी एज से आगे की बात इन्होंने की है एंड ही इज अ वेरी थॉटफुल लीडर। तो अगर इंटरनेशनली देखा जाए, अमेरिका में, कनाडा में, उन्होंने पाकिस्तान की जो बयानी है उसको बेचा तो है ठीक वक्त,
पाकिस्तान के बयानियों को दुरुस्त भेजा है, बेचा है बिलावल भुट्टो ने, इसलिए कि पाकिस्तान का मौकफ दुरुस्त है और दुनिया ने इसको तस्लीम किया है कि पाकिस्तान का मौकफ दुरुस्त है। इसके बजाय इसके बरक्स हिंदुस्तान का मौकफ चूंकि झूठ पर मबनी था, चूंकि फरेब पर मबनी था, लिहाजा हिंदुस्तान को न सिर्फ अस्करी महाज पर हजीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ा बल्कि सिफारती महाज पर भी उसने जो पसपाई खाई है, जो हाँ आम जबान में कह लो कि जो मार खाई है वो उसके लिए मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। अगरचे देखो बिलावल तो शशि थरूर के मुकाबले में तिफले मकतब है, इसलिए कि शशि थरूर का
वेरी एक्सपीरियंस
कामत है, एक कद है, वो बैन अल-अक़वामी एक्सपोजर है, वो अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान का मौकफ कमजोर था लिहाजा शशि थरूर को भी नाकामी का सामना करना पड़ा और उन्होंने देखो मुझे तो हैरत हुई कि कोलंबिया जैसे मुल्क में जाने की हिंदुस्तान को क्या जरूरत थी। पाकिस्तान का वक्त जा रहा है, अमरीका गया है, बरतानिया में इस वक्त है, फ्रांस जाएगा, फिर उसके बाद जर्मन जाएगा, तो ये वो ममालिक हैं जो कलीदी ममालिक हैं जो बैन अल-अक़वामी राय और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल को बनाती हैं, लिहाजा इनमें वक्त भेजना तो एक तरह से सिफारती दानिशमंदी है। लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि बल्कि इससे अंदाजा होता है कि हिंदुस्तान किस तश्वीश का शिकार है। और हिंदुस्तान देखो जो मोदी सरकार जो अपनी कौम को हजम करवाना चाह रही थी उसमें नाकामी हुई है।
नहीं सर, अभी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, नाकामी तो नहीं अभी कह सकते, ये एपिसोड भी इसीलिए उसी इलेक्शन,
लेकिन आसार यही है कि वो अगला इलेक्शन जो है वो बिहार में है और बिहार आबादी के एतबार से हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी रियासत है यूपी के बाद, तो वहां पर भी जो मैं मुबसरीन के तजिए पढ़ता रहा हूं तो आसार यही है कि वहां पर भी इंतखाबात में मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी।
सुनने जनाब करमतुल्लाहवारी साहब मेरे साथ, पाकिस्तान की उन 88 आवर्स की परफॉर्मेंस इतनी कमाल की थी कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग ट्रेनिंग के लिए इनवाइट भी करेंगे। आज एक और न्यूज भी है कि पाकिस्तान को J-35 तैयारों की पेशकश हुई है चाइना ने, बिकॉज चाइना महसूस करता है कि उसकी प्रोडक्ट को चार चांद लगा दिए, बट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द
तैयारे बनाने वाली कंपनी है बीबी, उसके स्टॉक्स की, उसके शेयर्स की तो कीमत आसमान से बातें कर रही
है। इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ दोज हु वर ऑपरेटिंग।
यही तो वो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, बहुत से लोगों ने ये ट्रेंड लगाई कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल ने पाकिस्तानी फजाइया को पेशकश की है कि हम तुम्हें चंद तैयारे हदिया कर देते हैं, इसलिए कि हमारे तैयारों में कोई खराबी नहीं है। खराबी असल में हिंदुस्तान के पायलटों में
टेक्निकलिटी है। हाँ। यूजर्स की एक्सपर्टीज बहुत काउंट करता है। पाकिस्तान में मैं अभी बिलावल भुट्टो साहब की बात की, दैट वाज अ रीजन कि बिलावल भुट्टो साहब की जो इसके लिए जो चुना था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चुना था। इंटरनेशनल स्केल पे उनकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी रही। डजंट इट इफेक्ट शहबाज शरीफ साहब?
नहीं, शहबाज शरीफ ने नहीं चुना था। मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ के जो सरपरस्त आला हैं उन्होंने चुना था, और उन्होंने चुना यूं था कि बिलावल की ग्रूमिंग उनके ख्याल से करना जरूरी थी, बैनुल अक्वामी ग्रूमिंग करना, उनकी तरबियत करना जरूरी थी, इसलिए कि उनके मंसूबे में दो ही तरजीहात हैं, एक तो मरियम नवाज को वजीर आजम बनाना और दूसरे बिलावल भुट्टो को। तो ये इन दो मौरूसी सियासतदानों के की औलाद के दरमियान पाकिस्तान की क्यादत के का फैसला होने वाला।
थोड़ा सा मैं आपसे इख्तलाफ इसलिए करती हूँ कि एक वक्त में देखिए जी, भुट्टो साहब की बात कर लें, ही वॉज वजीर खारजा के तौर पे, यानी एज ये जाते हैं बिलावल भुट्टो जो गए बाहर, तो रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल स्केल इज अ बिग डील। मरियम नवाज साहबा तो भी इंटरनेशनल स्केल पे जाके उन्होंने कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया पाकिस्तान को, तो आई डाउट इट वेरी मच कि वो उनको भी देखना चाहते हैं, उनको भी देखना चाहते हैं। यहां पर कोई सॉलिड सा मुझे आंसर चाहिए था कि एक वक्त में बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर ना।
नहीं, वो तो पाकिस्तान की तारीख क्या बता रही है हमें आरफा बीबी?
सर वोट तो वोटर डालता है,
बारियां लगती रही हैं ना।
वोट तो वोटर डालता है ना,
वो तो वोटर डालता है, जो वोटर डालने वाले के वोट का क्या एहतराम है पाकिस्तान में? ये तो तुम्हें हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि गुज़श्ता बरस 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का जो नताइज हुए थे उनको रातों रात बदल दिया गया, उन पर शबकून मारा गया, तो वोट का एहतराम तो पाकिस्तान में खत्म हो चुका है ना। वोटर ठीक है, हर जमहूरी माशरे में वोटर का ये इस्तेहकाक होता है, हक होता है, उसका बुनियादी हक है कि वो अपनी पसंद के हुक्मरान मंतखब कर सके। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया तो यही है बीबी कि पाकिस्तान में अवाम ये फैसला नहीं करते कि वो किस क़यादत चाहते हैं, वो जो पाकिस्तान के मालिक को मुख्तार बने हुए हैं वो फैसला करते।
अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी, उसमें मैं किसी एक पार्टी को भी मुबर्रा नहीं करती उसमें से, आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी जानबूझ के उनके कंधे को इस्तेमाल करते हैं।
बीबी देखो ना, तुम पौधे की जड़ तलाश करो ना।
नहीं, इस वक्त हम बता रहे ना, वी आर नॉट इन अ पोजीशन, पानी सर से उठा हुआ है, वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम उस चीज में जाएं। मगर इस बात को आप मान लें कि पाकिस्तान की कोई भी जमात है, चाहे वो MQM थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो मुस्लिम लीग थी, चाहे वो PTI थी, चाहे वो जमात इस्लामी की बात कर लें, Nobody can be in a position and every politician look at their shoulders.
बीबी इसलिए ये इस वजह से है, ठीक है, पाकिस्तान की सियासी पार्टियां नाकाम होती रही हैं, लेकिन उनको नाकाम करवाया जाता है इसलिए कि पाकिस्तान में तुम्हारी तारीख बताती है कि आज तक किसी वजीर आजम ने अपने 5 साल मुद्दत वजारत मुकम्मल नहीं की। पाकिस्तान की तारीख यही है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जमहूरियत को परवान चढ़ने ही नहीं दिया गया।
और अगर जमहूरियत ज्यादा भी हो जाएगी तो गड़बड़ है। अमेरिका में कौन सी जमहूरियत है? हमारी जमहूरियत नहीं तो अमेरिका में जमहूरियत नजर आती है?
नहीं, वो टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। अगर अमरीका गलत रविश पर चल रहा है तो हमें हम पर कोई फर्ज नहीं है कि हम अमरीका की पैरवी करें।
हम तो वैसे ही गलत लोग हैं।
नहीं तो अपने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना तो किसी अकलमंद के दिमाग की पैदावार नहीं है।
सही सही जनाब, क्या देखते हैं आप दुनिया को अगले दो चार साल में, पांच साल में कहां देखते हैं?
मैं तो ये देख रहा हूं बीबी के वो जो मुस्तहकम जमहूरियतें हैं उनमें ही।
कौन सी मुस्तहकम जमहूरियत को बताएं?
मुस्तहकम जमहूरियत अमरीका की है जिसकी मिसाल दी जाती है, इसलिए कि जमहूरी निजाम ने जिस तरह से वहां पे जड़ें पकड़ी और जिस तरह से
आज तक वहां कोई प्रेसिडेंट तो औरत बन न सकी।
नहीं वो अलग बात है, वो उसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं ये तो माशरे की कमजोरी।
औरत को राइट कब दिए गए?
नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं वो राइट दिए गए मगरिब में बहुत देर से दिए गए। हमारे जो हम जो तीसरी दुनिया के ममालिक कहलाते हैं, जो तरक्की पजीर कहलाते हैं, तरक्की याफ्ता नहीं है, बकौल उनके जो अपने आप को तरक्की याफ्ता समझते हैं, ये मगरबी ममालिक की तारीख ये है कि औरत के साथ औरत के हुकूक, बुनियादी हुकूक देने में जिस तरह की खसासत, जिस तरह की कंजूसी का मुजाहरा मगरबी माशरों ने किया, मशरकी माशरों ने नहीं किया। तो ये तो माशरे की कमजोरी है, ये तो सोशल प्रॉब्लम है कि अमरीका में आज तक कोई औरत सदर मुंतखब नहीं हो सकी, लेकिन अमरीका की जमहूरियत पर ये सवालिया निशान नहीं खड़ा होता। अब जमहूरियत की बेखुनी करने की कोशिशें जारी हैं और वो शख्स कर रहा है जिसके किरदार को, जिसके अफ़आल को जानते बूझते हुए अमरीका के अवाम ने उसको दोबारा सदारत के लिए मुंतखब किया। तो मसला जमहूर का है कि जमहूर इतने नाअकबत अंदेश हो चुके हैं कि वो
आप बहुत प्यारे हैं। अच्छा अमेरिका
किरदार को जानते हुए उसके
अमेरिका का जमहूर जो है वो नाशनास, गैर शनास है, इंसान शनास नहीं। तो पाकिस्तान का जमहूर इंसान शनास है?
नहीं, पाकिस्तान के जमहूर ने बेदारी का बयन सबूत दिया था पिछले इंतखाबात में। अगर उनके हक पर डाका डाला गया तो वो उससे उनकी कमजोरी जाहिर नहीं होती, उससे कमजोरी जाहिर होती है उनकी जो अपने आप को पाकिस्तान का मालिक व मख्तार समझते हैं और पाकिस्तान को अपनी मौरूसी जागीर समझते हैं।
बहुत शुक्रिया। मतलब मेरा ख्याल है कि हम कोई डिसाइड कर नहीं पा रहे, मुझे भी यही लगता है।
तो बहस का हुस्न तो यही है बीबी कि हम वी एग्री टू डिसएग्री।
बिल्कुल सही कहा आपने करामतुल्लाहौरी साहब। मैं बल्कि मुझे तो कभी कभी बड़ा गम होता है कि देखिए, अगर कल भी शाह साहब भी यही बात कर रहे थे कि एक कौम चाइना, आप जमहूरियत की बात करते हैं, अमेरिका इंग्लैंड की जमहूरियत की बात करते हैं, मंगोलों की आप बात करते हैं, मगर चाइना ने अभी भी बयान दिया है कि दिए से दिया जलाओ। 800 साल की तारीख में चीन की कौन सी लड़ाई आपके सामने आई है, मुझे बता दीजिएगा। आज ताइवान के बारे में बात करते हैं, ताइवान को लीज पे दिया था 99 ईयर्स, इट बिलोंग्स टू चाइना। चाइना ने तो कोई लड़ाई नहीं की, तो फिर चाइना से कनाडा को भी खतरा है, अमेरिका को भी खतरा है।
हांगकांग को लीज पर दिया था,
हांगकांग को
वर्ष की। ताइवान तो हमेशा से चीन का है,
मगर अब ताइवान अमेरिका को, यही प्रॉब्लम थी ना कि चाइना, ताइवान इज इंडिपेंडेंट कंट्री नाउ, हांगकांग को चाइना वापस नहीं ले सकता, मगर चाइना ने किसी के साथ लड़ाई नहीं की। जितनी प्रॉक्सी वॉर्स हैं आपका बेस्ट कर रहा है
चीन ने, तो बीबी मगरिब के
चीन से खतरा क्या है?
नहीं, चीन से खतरा कोई नहीं है, ये तो मगरिब का प्रोपेगेंडा है चीन के खिलाफ कि चीन आलमी अमन के लिए खतरा है, इसके लिए वो अपने इत्तेहादी तलाश करना चाहते हैं, वो अपना महाज बनाना चाहते हैं। ये तो मगरबी दिमाग का फुतूर है। देखो मैं तो चीन का बड़ा बद्दा हूं, तुम 800 वर्ष की बात कर रही थी, मैं तो चीन की 5000 साल तारीख में दावे के साथ कह सकता हूं कि चीन ने आज तक अपनी सरहदों से निकल के किसी मुल्क पर हमला नहीं किया।
फिर खौफ कहाँ है? कनाडा को भी खौफ
नहीं? तो ये तो मगरबी जहनों का खन्नास है। मगरबी जहनों का खन्नास इसलिए है कि उन्होंने तो चीन को हर तरह से तबाह करने की कोशिश की थी। देखो ना, चीनियों को अफीम का आदि बनाने की कोशिश करने वाले कौन थे? मगरबी ममालिक थे। मैं तो चीन में रहा हूँ आरफा बीबी। शंघाई में आलम ये था कि शंघाई शहर मुख्तलिफ मगरबी ममालिक के दरमियान बटा हुआ था। आज तक चीनियों ने शंघाई के उस पार्क को जू का तू रखा हुआ है, जिसके बाहर बोर्ड लगाया हुआ था, वो बरतानवी इलाका था, जिसके बाहर बोर्ड लगाया हुआ था कि डॉग्स एंड चाइनीज आर नॉट अलाउड।
तो फिर प्रॉब्लम तो कहीं और है। अभी आप जमहूरियत, मैंने ये सारा आपको इसलिए याद दहानी कराई कि जब हम जमहूरियत का तो हम राग लापते हैं कि जमहूरियत वेस्ट में है। ये अभी आपने जमहूरियत का जिक्र किया कि डॉग्स एंड चाइनीज आर नॉट अलाउड इन देयर कंट्री।
वो तो देखो, मगरबी की तारीख क्या है कि उन्होंने अपने माशरों में तो जमहूरियत को परवान चढ़ाया, लेकिन अपने माशरों से बाहर, अपनी सरहदों से बाहर, वो जो तरक्की पजीर दुनिया कहते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड कहते हैं, उसमें उन्होंने जमहूरियत की कहीं पासवानी नहीं की, कहीं सरपरस्ती नहीं की। बल्कि हम अपनी तारीख देखते हैं कि हर अस्करी आमिर को अमरीका की आशीर्वाद हासिल रही, और अब हमारे जो मौजूदा जो हाइब्रिड निजाम की पैदावार जो हमारे बोनापार्ट हैं आसिम मुनीर साहब, वो अमेरिका यात्रा के लिए बहुत बेचैन हैं, बहुत बेकरार हैं, इसलिए कि
नहीं जाते। आप फिक्र नहीं करें, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका एक पैसा दिया करता होता था, जो ट्रेनिंग पिक अमेरिकन आते थे, एक अरसे से नहीं आए। लास्ट ईयर उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। दे डिड नॉट सेंड एनी अमेरिकन्स फॉर द कोर्स।
ये खबर गर्म है कि फील्ड मार्शल साहब अमरीका के दौरे पर जा रहे हैं।
आना चाहिए सर, आना चाहिए। देखिए जी, नरेंद्र मोदी ने कनाडा के बीच में रॉ ने मर्डर्स करवा दिए सबकी नजर का। इंडिया ने जबरदस्ती कहा कि हम नहीं इन्वेस्टिगेशन में, मगर पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी इज ब्यूरोक्रेसी, आपकी डिप्लोमेसी इज डिप्लोमेसी। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने कहा है कि इट्स अ फिफ्थ बड़ी मईशत है, उनको G7 की मीटिंग में आना चाहिए।
और
तो अगर पाकिस्तान आता है तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम।
कनाडा की सिख बरादरी इंतहाई बरहम है इस फैसले पर,
मगर प्राइम मिनिस्टर कार्नी का फैसला सही है कि
वो अलग बात है।
तो सेम वे
हमारे यहाँ हमारे जो अस्करी कायदीन है,
सर अमेरिका के साथ बिगाड़ना तो नहीं है ना?
नहीं,
अगर आपके साथ बिगाड़ना है,
मैं ये तो नहीं कह रहा कि अमेरिका के साथ बिगाड़ लो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे जो बोनापार्ट्स हैं, उनकी जहनियत का यह आलम है कि अगर अमेरिका का सर, अमेरिका का दस्त शफकत उनके सर पर हो तो वो इसे अपनी सबसे बड़ी कामरानी समझते हैं।
आप कह सकते हैं, आई डाउट इट। मेरा ख्याल है दुनिया चेंज हो गई, अब बहुत दुनिया चेंज हो गई।
हमारा माशरा तो बदकिस्मती से वहीं पर खड़ा हुआ है।
बहुत शुक्रिया।
दुनिया अगर चेंज हो रही है तो यही तो रोना है बीबी।
फिर वही बात है कि हम आर्ग्यूमेंट में जा रहे हैं।
रोना यही है कि दुनिया बदल रही है। चीन हमारे लिए मिसाल है कि हमसे 2 बरस बाद आजाद हुआ था, लेकिन चीन तरक्की के किस बुलंदियों पर पहुंच गया, हम तंजली की तरफ जा रहे हैं।
करामत लगवारी साहब से आपकी बातचीत कराई। हमारे अगले स्पॉन्सर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, मुझे भी वहां हेलो करके गए हैं। तो बहुत शुक्रिया करामत भाई। अपना क्विकली, अगर आपके पास मिनट, अगर आप अपना कथा शेयर करें तो बड़ी मेहरबानी होगी।
आज का वो कथा इसी पस मंजर में है कि वो जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं वो वाशिंगटन यात्रा पर जाने के लिए बेकरार हैं और सुना यह है कि वाशिंगटन से उनको
नहीं सुनी सुनाई बात में ना बात करें आप मैं बताती हूँ रेडियो प्रोग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है और अगर मैं और आप सोशल मीडिया या सुनी सुनाई खबर से कोई चीज
मैं सोशल मीडिया
दैट इज रॉन्ग
मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा मैंने 36 साल सिफारती जिंदगी गुजारी है तो मैं तो वो उन
आप अपना कथा पेश
उन पैगामात की बुनियाद पर कह रहा हूं कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारे वाशिंगटन के सिफारत खाने पर कितना दबाव है इस्लामाबाद की तरफ से कि फील्ड मार्शल साहब के लिए अमरीका की दावत
सर आप अपना कथा पेश करें कथा पेश करें प्लीज
तो उसी पसंदर में है कि चले हैं अहले हरम देर को सनत पाने चले हैं अहले हरम देर को सनत पाने बुतों के सामने झुकना ही इनका सेवा है बुतों के सामने झुकना ही इनका सेवा है इन्होंने बेच दिया तुझको कौड़ियों के एवज ए कौम मुझको तेरी बेहसी से शिकवा है
बहुत शुक्रिया मैं और आप भी यहीं पे बैठे हुए क्रम दिलो गौरी साहब वंडरफुल पर्सन मगर उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी वी एग्री टू डिसएग्री मगर बाज जगहों में मुझे कभी कभी खुद अपने पे भी आता है कि हम एक ही बात कर रहे होते हैं और फिर उसी को हम डिनाई भी कर रहे होते हैं और फिर उसी के फेवर भी कर रहे होते हैं बहरहाल इट वॉज जस्ट ट्राई
यही बहस का हौसला है देखो डायलॉग डायलॉग होना चाहिए डायलॉग जारी होना चाहिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों फरीक
एग्री कोई
एक राय पर मुत्तफिक
बिल्कुल सही टॉप ऑफ टावर का वक्त हो जाता है टॉप ऑफ टावर वेलकम बैक प्लीज स्टेट
ताजा सब्जियां ली तुहाडा अपना फार्म कैलगर सब्जी फार्म जिथे तुसी ले सकते हो निखरे पौधे मिट्टी गमले अते हर तरह दे फुल ते सब्जियां दी पनीरी अपने घर विच कोई भी सब्जी या फुल दे पौधे उगाण लई कैलडन सब्जी फार्म ते आओ असी सवेरे 9 बजे तो शाम 8 बजे तक तुहाडी सेवा लई हाजिर हां 12050 एयरपोर्ट रोड कैलडन जां तुसी फोन करो 905-840-9000 905-840-9000
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है
मेरी सेविंग $350
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है मैंने सेव किए हैं $1,775
क्या चमत्कार किया मुझे भी गुर सिखाओ ना
भाई बात सादा सी है हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6479037736 4729037 3
12th annual Handi Mississauga Halal Food Festival Friday, June 13th, Saturday, June 14th. Fun, food and entertainment is back at Celebration Square, Mississauga.
Bina kisi hawaii safar ke travel around the world. Maj, masti, khao, piyo. Turkish, Irani, Iraqi, Misri, Pakistani, Indian. Halal food, bas zaike hi zaike. Live concert, Nisha Shafi. और शहजाद रॉय
फ्री एडमिशन फ्री पार्किंग फ्री फ्री फ्री
और क्या अब हमारी जान चाहिए इससे ज्यादा फन आपको कहीं मिल सकता ही मार्क 13th एंड 14th ऑफ जून एट सेलिब्रेशन स्क्वायर नो टिकट्स फुल एंजॉयमेंट कम विद योर फैमिली कॉल अमेर शम सी 416-662-7861
Tired of missing your favorite Indian shows? Introducing Fastway IPTV, your gateway to 11,000 plus channels and 150,000 plus movies and series, all in one box. Catch up TV, full HD streaming, VOD and regional channels. One-time payments, long-term peace of mind. Just $216 for 2-year subscription and free 4K IPTV box. Just $360 for 5-year subscription and free 4K IPTV box. Call now 866-692-4788 and bring home the ultimate South Asian entertainment experience. Free delivery all over Canada and US. Fast Way IP TV. Entertainment your way.
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटो